चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है विश्व जनसंख्या दिवस और इससे जुड़े मुद्दों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रही हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव मीरा श्रीवास्तव और परिवार नियोजन प्रभाग की अपर आयुक्त डॉक्टर इंदु ग्रेवाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत की थी, जबकि दुनिया की आबादी 5 अरब तक पहुंच गई थी और ये दुनिया की आबादी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा के बाद हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मकसद भी यही था कि जो जनसंख्या नियंत्रण के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर विचार किया जाए, उन पर प्रकाश डाला जाए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक जो बढ़ती आबादी है, बढ़ती जनसंख्या है, वो कई चुनौतियां पेश करती है, जैसे रोजगार की समस्या, आर्थिक विकास, गरीबी, आय वितरण और सामाजिक सुरक्षा इससे प्रभावित होती है। इसका शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, आवास, पानी, भोजन और ऊर्जा पर भी एक बुरा असर होता है। लेकिन जबकि विश्व की जनसंख्या आधिकारिक तौर पर अब 8 बिलियन को पार कर गई है, ये एक यथार्थ या सच्चाई होते हुए हमें इस बात को स्वीकार करते हुए इसे एक लाभ के रूप में भी देखना होगा। इसका ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। अगर हम भारत के संदर्भ में भी बात करें तो भारत की जो जनसंख्या है वो पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसीलिए भारत के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि का एक विषय बड़ा अहम हो जाता है। तो आज हम कार्यक्रम में विश्व जनसंख्या दिवस के हवाले से आज भारत की आबादी, इसकी चुनौतियों, समाधान और किस तरह से ये एक डिविडेंड के रूप में, लाभ के रूप में हमारे लिए काम कर सकती है, उस पर हम विस्तार से आज बात कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में विशेषज्ञ जुड़े हैं, उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव मीरा श्रीवास्तव जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम।
कमल जी नमस्कार, और आपके सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर इंदु ग्रेवाल जी का। आप एडिशनल कमिश्नर हैं फैमिली प्लानिंग डिवीजन, परिवार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम।
कमल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए।
सबसे पहले मीरा श्रीवास्तव जी आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा, पहला प्रश्न आपसे ही कि भारत की जो आबादी है वो दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, कैसे आप इस आबादी को देखती हैं, जो लगातार जनसंख्या वृद्धि हुई है भारत की उसने क्या चुनौतियां पेश की हैं, और अब जबकि भारत की आबादी, हमारे पास एक बहुत बड़ी आबादी है, अब क्या चुनौतियां हैं और क्या इनके समाधान हैं आपकी दृष्टि में?
कमल जी आज के संदर्भ में भारत की जनसंख्या वर्तमान में लगभग 140 करोड़ की है
जी।
तो सबसे पहले हम इसको हम केवल चुनौती के रूप में देखें ये तो सही दृष्टिकोण नहीं होगा, क्योंकि ये डिविडेंड भी है और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि भारत सरकार की ओर से कि हम स्वास्थ्य एवं सुखी जीवन के लिए जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं और शिक्षा से रिलेटेड सेवाएं हैं उनकी तरफ हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि उनको हम कैसे बेहतर बना पाए
जी।
और इसके संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे जो टारगेट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के और सतत भविष्य के, उसके लिए हम क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को भी बहुत प्रमोट कर रही है सरकार, जिसकी तरफ से हम लोग एक विकसित भारत की ओर एक सकारात्मक कदम बढ़ा सकते हैं और हम अपने देश को बिल्कुल मजबूत और सही दिशा में लेके जा रहे हैं। तो हम इसके अपने जनसंख्या किस प्रकार से हमारे देश को आगे बढ़ाए और हमारे देश को प्रगति की ओर ले जाए, उसमें इस जनसंख्या को एकजुट मिल करके हमको आगे बढ़ना है।
अगर हमारी जनसंख्या के पास सुलभ सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की सही पहुंच है, तो एक गुणवत्ता पूर्ण जीवन वो जी सकते हैं। लेकिन डॉक्टर इंदु ग्रेवाल आपसे ही मैं जानना चाहूंगा कि अगर स्वास्थ्य की हमारे पास निश्चित रूप से अब पहुंच है पूरी जनसंख्या के पास, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि किस तरह की स्वास्थ्य चुनौतियां बड़ी जनसंख्या ने पेश की हैं, और अगर सभी तरह से पूरी तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं एक भारत की विस्तृत जनसंख्या को मिलती हैं तो वो कैसे एक डिविडेंड बन सकती है?
अमन जी
बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, आपने एक मुद्दा रखा सामने। जो हम लोग स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी पूरी जनसंख्या के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसका कोई एब्रिविएशन हमारा है RMMCAH+N, आर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो हमारा सबसे पहला पिलर है, और एम इज मैटरनल हेल्थ, एन इज न्यूनेटल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, एडोलेसेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो इन सबका एक बहुत ही वृहद कार्यक्रम भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चला रही है। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों को शिक्षित करते हैं। शिक्षित का मतलब ये है कि हम उनको स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करते हैं। एक होती है एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि शिक्षा विभाग का काम है, लेकिन हम भी उनको एजुकेट करते हैं हेल्थ के मामलों में कि उन लोगों के लिए क्या खाना अच्छा है, कौन सी अवस्था उनकी शादी के लिए सही है, कौन सी अवस्था किसी की प्रजनन के लिए सही है, किस प्रकार से हर एक बार बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद दूसरे बच्चे में कितना अंतर होना चाहिए, तो इन सब की हम उनको जानकारी देते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो एक हमारे इस बड़े प्रोग्राम की बड़ी बैकबोन है, और इसी प्रोग्राम से ही हमारी मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, न्यूनेटल हेल्थ, इन्फेंट मोर्टिलिटी सब पे असर पड़ता है। तो ये प्रोग्राम जो कार्यक्रम हमारा 1953 में शुरू हुआ था, और इंडिया एक पहला हमारा भारत देश सबसे पहला देश बना जिसने की परिवार कल्याण के लिए एक कार्यक्रम चलाया।
आपने बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम की चर्चा की, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो मीरा श्रीवास्तव जी, आपसे ही मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे सामने कुछ पॉजिटिव आंकड़े आए हैं, जैसे जो भारत की प्रजनन दर है वो अब हमारे पास 2.0 के साथ भारत एक रिप्लेसमेंट लेवल है उसके बराबरी कर चुका है, यानी काफी गिरावट आई है जो पहले बहुत ज्यादा थी। तो इस आंकड़े को आप कैसे देखती हैं? जैसे बहुत सारे दायरे बताए डॉक्टर इंदु अग्रवाल ने कि किस तरह से पूरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय लगातार रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लेकर पूरी एडोलेसेंट हेल्थ तक पूरे एक कार्यक्रम को संचालित कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, जो रिप्रोडक्टिव लेवल पर ये या मैटरनल हेल्थ पर जो स्कीम्स हैं उसके कारण या जागरूकता के कारण और तमाम कारणों से जो हमारी ये प्रजनन दर है वो एक स्थिर होने में इसका एक बहुत बड़ा रोल है?
जो आप सवाल कह रहे हैं वो एक्चुअली हम लोग का, मैं ये मानूंगी, एक सक्सेस स्टोरी, क्योंकि जो हम लोग ने बहुत सालों से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से इंटरवेंशन किए हैं, जो हमने स्कीम्स चलाई, जो हम लोग ने जागरूकता लेके आए कि हमारी फैमिली, हमारी माताओं की स्वास्थ्य जो है सबसे एक ऐसा विषय है जिसपे पूरी परिवार को सजग होना चाहिए, क्योंकि अगर माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा स्वस्थ होगा, और ये तो उसकी पूरी फैमिली को आगे लेके जाने वाला एक एरिया है जहाँ पर हमको बिल्कुल भी हम किसी तरह से भी उसमें ढील नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप देखें देश के हर स्टेट में उन्होंने अपने इंडिविजुअल लेवल पे केंद्र सरकार से मिल करके उनके साथ आगे चल करके उनकी पॉलिसीज को, प्रोग्राम को उन्होंने अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में ढाला है, और उन्होंने जहां पर भी इंटरवेंशन की जरूरत हुई, चाहे वो अवेयरनेस की हो, चाहे वो जागरूकता की हो, या जैसे हम कल जो है नेशनल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाएंगे, चाहे वो हो, या उसके बाद हमारी जैसे इंदू ने बात की थी कि हम लोग शिक्षा, जो हम लोग बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं, जहां पर हम लोग ने स्वास्थ्य को एक महत्वपूर्ण विषय बना के रखा है करिकुलम में, तो हम लोग बचपन से ही कोशिश करते हैं कि बच्चे को अच्छा खाना, अच्छे स्वास्थ्य और उससे रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो है जानकारी दे। तो इसकी शुरुआत तो भारत सरकार ने स्कूल स्तर पे ही शुरुआत कर दी है, फिर हमारे जितने प्रोग्राम जो है हम लोग बिल्कुल ग्रास रूट पे लेके जाते हैं, जहां पर हम लोग साथी वाहन यूज करते हैं, जहां पर हम लोग पंचायत स्तर पे प्रोग्राम्स की बातें करते हैं, जहां पर हमारी जो आशाएं हैं, हमारे जो ANMs हैं, वो जो है विवाहित नहीं और न्यूली वेडेड कपल्स हैं उनको जो है काउंसलिंग देती है, ये सब छोटे छोटे इंटरवेंशन में सब मिलजुल करके हम लोग कहते हैं बूंद बूंद से पानी बढ़ता है, तो ये वही ही प्रयास है जिसकी वजह से हम लोग आज एक TFR नेशनल लेवल पे 2.0 पे अचीव कर पाए हैं। और ये मैं इसको जो है इसकी सफलता जो है हर ग्रासरूट वर्कर जो उसमें प्रयत्नशील है उसको मैं देती हूँ और हमारे मीडिया को देती हूँ जिन्होंने ये मैसेज आगे हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड किया।
डॉक्टर इंदु ग्रेवाल, क्योंकि परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है वो जागरूकता की वजह से जो सरकार के प्रयास हैं उसकी वजह से एक सफलता तक पहुंचा है, और आप थोड़ा और बताना चाहेंगी कि अब किस तरह से जो परिवार नियोजन के कार्यक्रम में और ज्यादा चीजें जोड़ी गई हैं जिससे कि इस कार्यक्रम को और धरातल पर उतारा जाए और लोगों को इस मामले में जागरूक किया जाए।
कमल जी, जैसे मीरा श्रीवास्तव मैडम ने बताया कि किस प्रकार से हमारी सर्विसेज प्रोविजनिंग हो रही है, उसी में ही मैं थोड़ा और विस्तार से बताना चाहूंगी कि जो हमारा ये प्रोग्राम है ना, ये कंट्रासेप्टिव्स की बात करता है
जी।
इसमें हम अपनी जो कंट्रासेप्टिव्स की बास्केट बनाते हैं जिसमें बहुत सारे च्वाइसेस होते हैं, तो हम उसको धीरे धीरे अपनी कंट्रासेप्टिव बास्केट को बढ़ा रहे हैं। ट्रेडिशनली हम बात करें तो हमारे पास कुछ ज्यादा साधन नहीं थे। पहले हमारे पास में एक पुरुष के लिए सिर्फ कॉन्डम्स होते थे, महिलाओं के लिए ओरल पिल्स होती थी, कंट्रासेप्टिव पिल्स होती थी, या फिर हम नसबंदी करते थे महिला की या पुरुष की। फिर बाद में इसमें हमारा एक इंट्रायूट्राइन डिवाइस ऐड हुआ जिसको कि कॉमनली लोग कॉपर टी के नाम से जानते हैं, तो उस डिवाइस में भी हमारे पास दो तरह के डिवाइस आजकल अवेलेबल है। फिर हमारे प्रोग्राम में अंतरा नाम से एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऐड हुआ, और अब हमारे पास में एक इम्प्लांट है, एक बार इम्प्लांट लगाते हैं तो वो 3 साल तक काम करता है, और अब हमारे पास में सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी आ गया है
जी।
और एक और बहुत ही अच्छा हमारे पास जो हमारा एंडोजेनस प्रोडक्ट है सेंट्रोवेन, जो कि छाया के नाम से जाना जाता है, वो नॉन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव पिल। इसके अलावा हम लोगों ने प्रोग्राम में प्रेगनेंसी टेस्ट किट को भी इंक्लूड किया है ताकि कोई भी महिला किसी डाउट होने पर इजीली इस किट को एक्सेस कर सकती है। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में ये फ्री में मिलता है, इवन आशा के पास में भी होता है, तो वो अपनी प्रेगनेंसी को टेस्ट कर सकती है। और एक हमारा इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल होती है कि अगर कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है या ऐसी सिचुएशन होती है या कुछ ऐसी ही संभावना हो जाती है, तो उस पिल को 72 आवर्स में लिया जा सकता है ताकि प्रेगनेंसी का कोई रिस्क ही ना रहे। तो ये तो मैंने आपको एक हमारे बास्केट के बारे में बताया, और हमारा जो पुरुष नसबंदी का तरीका है वो भी, और जो महिला नसबंदी का तरीका है वो भी अब काफी इम्प्रूव हो गया है। अब जो पुरुष नसबंदी है उसमें अब टांका भी नहीं लगता है, तो ये हमारी बास्केट है पूरी। इसके अलावा जब हमारा प्रोग्राम अच्छा एकदम से NFHS के डिफरेंट डेटा आते हैं, और जो हमारा NFHS स्कोर पर ये डेटा आया था, तो उसमें हम लोगों का जो TFR है, TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट, या हम कहेंगे कि प्रति स्थापन स्तन प्रजनन दर, तो हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 उसमें ये हमने एम गोल बनाया था कि हम TFR 2.1 अचीव करके ताकि हम लोग रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी पर आ जाए। जैसे मैडम ने भी कहा कि जो नवविवाहिता युवती होती है तो उसको हमारे स्वास्थ्यकर्ता उनको अप्रोच करती हैं, उनको मुबारकबाद देती हैं, और मुबारकबाद देते हैं उनको साथ में एक नई महल किट को भी देते हैं। उस नई महल किट में कुछ ये हमारे उसके यूटिलिटी की चीजें होती हैं, उसमें कुछ कॉस्मेटिक्स का सामान होता है, और उसके साथ साथ हम हमारी एक हेल्पलाइन है परिवार कल्याण के लिए, हमारी एक हेल्पलाइन चलती है, वो उसके अंदर वो नंबर लिखा हुआ होता है
जी।
वो नंबर है 1800-11-6555। मैं रिपीट कर देती हूँ नंबर 1811-6555। तो ये हेल्पलाइन का नंबर उसमें दिया जाता है, उनको कभी भी किसी भी वक्त अगर कोई भी जानकारी लेनी है वो जानकारी ले सकते हैं। इससे जो नवविवाहिता है वो बड़ी एम्पावर्ड हुई है क्योंकि उसको हेल्थ फैसिलिटी जाने की जरूरत नहीं है
जी।
उसको किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, उसको जो भी डाउट्स हैं वो इस हेल्पलाइन के द्वारा अपने किसी भी डाउट को पूछ सकती है किसी भी समय, और इसमें उसको एक प्राइवेसी भी मिलती है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी मिलती है। लेकिन ये सुविधा हमारी 9 बजे सुबह से और शाम को 6 बजे तक ही उपलब्ध रहती है। फिर दूसरा हमारा बहुत अच्छा इसमें इनिशिएटिव है कि सार्क बहु सम्मेलन होता है। जैसा कि हमारा देश है उसमें हम लोग संयुक्त परिवार की हमारी कंसेप्ट थी, और बाद में थोड़ा सा न्यूक्लियर फैमिली पे हम आ गए, तो फिर भी हमारा जो बृहद देश है उसमें ज्वाइंट फैमिली सिस्टम अभी भी है। तो उसमें जो सास होती है घर में उसका फैमिली प्लानिंग में काफी बड़ा रोल होता है। तो इसलिए हम लोगों ने हर क्वार्टर में एक सास बहु सम्मेलन हर गांव में उसका आयोजन किया इस मिशन परिवार विकास प्रोग्राम के तहत। और तीसरा हमारा है सारथी वाहन, ये उन जगह पर जाता है जहां पर की हमारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, बहुत छोटी सी एक क्लस्टर है और वहां पर कुछ भी सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो वो वहां के जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो उस जगह को आइडेंटिफाई करते हैं और सारथी वाहन को वहां पर लेकर जाते हैं, और वहां उसमें हमारे कंट्रासेप्टिव की सारी च्वाइसेस भी होती हैं, काउंसिलर भी उसके साथ जाता है। और यही जो हमारा आईसी होता है, कैंपेन्स होती है, वो एक इंटेंसिफाइड मोड से होती है। और ये जो हमारा मिशन परिवार विकास है बहुत सक्सेसफुल स्कीम रही है, और इसके आने से जो हमारे हाई फर्टिलिटी पॉकेट थी उनमें हमारा जो फर्टिलिटी है वो कम हुआ है। और अच्छी बात यह है कि लोगों को कंट्रासेप्टिव की जानकारी मिली और वो लोग इन सुविधाओं को बहुत खुशी खुशी से ले रहे हैं, अब बच्चों में अंतर भी होने लग गया है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रोग्राम को पहले 146 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया था और अब हम इसको 370 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे प्रोग्राम की एक बड़ी अच्छी।
बहुत विस्तार से डॉक्टर इंदु गिरेवाल आपने बताया कि किस तरह से परिवार नियोजन को लेकर जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो धरातल पर काम कर रहे हैं, और कैसे जो एक पूरी प्रजनन दर है उसको रिप्लेसमेंट लेवल तक लाने में इन सभी कार्यक्रमों की बहुत बड़ी भूमिका है। और जो 5 राज्य या कुछ पॉकेट छूट गए हैं निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में इसके नतीजे भी उसमें देखने को मिलेंगे।
इसलिए हमारा जो डेटा है ये 2021 का है, 2019 और 21 के बीच में डेटा कलेक्ट हुआ था और आज हम 2024 में हैं। हो सकता है कि हम और पॉजिटिव रिजल्ट देखें।
बिल्कुल मीरा श्रीवास्तव जी, जैसा कि डॉक्टर इंदु गिरेवाल जी ने बताया कि किस तरह से परिवार नियोजन के कार्यक्रम धरातल पर उतरे हैं, हम आपसे भी समझना चाहेंगे क्योंकि ये कितना जरूरी है कि जनसंख्या वृद्धि की अपेक्षा एक स्वस्थ जनसंख्या का होना, जिससे कि जब सारी उस जनसंख्या तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, सभी को एक तरह से शिक्षा और जेंडर इक्वालिटी या तमाम जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उसको पूरा किया जा सके, जिससे कि एक स्वस्थ जनसंख्या एक विकसित देश में अपनी भूमिका निभा सके। तो ये कितना आवश्यक है कि एक ऐसी जनसंख्या हो हमारे देश की, ऐसी आबादी हो जो कि एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जिए।
हमारी आबादी, हर इंसान और हमारा हर देश का नागरिक स्वस्थ हो, यही हमारी सोच का तो और समझ का हम लोग किस तरह से इसको पॉलिसी रूप में हम लोग दिन प्रतिदिन इसी पे हम काम करते हैं। और हम लोग का जो प्रोसेस होता है स्वास्थ्य को बढ़ाने का, वो अगर आप देखें तो पूरे देश को लेके साथ चलता है। तो हम लोग जो है, अगर आप विशेषता फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की बात करें तो हम लोग जो है जो स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते हैं उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम लोग माँ के स्वास्थ्य पे ध्यान दें।
बिल्कुल।
तो हम लोग जो मेटर्नल हेल्थ का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर हमने जो लेडी प्रेग्नेंट हुई उसके लिए सबसे पहले हमने उसका ध्यान रखना है, उसके खान पान का ध्यान रखना है, उसको ये देखना है कि उसकी जो स्वास्थ्य जो है जांच होए वो सही टाइम पे होए। उसके लिए हमारे देश में हमारी आशाएं हैं जो उनकी काउंसलिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया था, उनको बताती हैं, उनको स्वास्थ्य सेंटर लेके जाती हैं। हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, हमारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं, जहां पर उनकी पूरी 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान उनकी सारी, जहां अल्ट्रासाउंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसको देने की सुविधा है। उसका अगर मान लीजिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उसको हम लोग अपने मंत्रालय में मॉनिटर करते हैं। हम लोग 32 कंडीशंस में हम लोग ने प्रिस्क्राइब करके रखी हैं कि इन कंडीशन में तो अगर मान लीजिए रिस्की प्रेगनेंसी है तो हम लोग उसको पूरी तरह से मॉनिटर करें और उसको हम लोग ये कोशिश करें कि हम उसका विशेष ध्यान रख करके हम लोग जितने भी उसकी आवश्यकताएं हैं उन सब को हम लोग जो है स्वास्थ्य की तरह से हम लोग उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करके ये इंश्योर करें कि जब बच्चे का जन्म हो वो स्वस्थ हो। तो हम लोग का जो प्रोग्राम आप फैमिली प्लानिंग का ही नहीं है, वो मेटर्नल हेल्थ से और चाइल्ड हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है। उसके बाद जब बच्चे का भी जन्म होता है तो उसका जो हम लोग का एक नया प्रोग्राम जो हम लोग उसको विस्तार रूप से और बढ़ा रहे हैं, जो हम लोग कह रहे हैं कि जो स्पेशली बच्चे जो है सिक होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, उसके लिए एक कैंगरू मदर का कॉन्सेप्ट आया है, उसके लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मदर और बच्चे को अलग ना रखा जाए, इकट्ठा रखा जाए, ताकि उससे और भी उनकी देखरेख बेहतर हो पाए, क्योंकि माँ अगर बच्चे के साथ रहती है तो बेटर उसको अच्छे से और भी देख सकती है। तो ये हम लोग एक और भी प्रोग्राम चला रहे हैं जिसको हम लोग कैंगरू मदर केयर कहते हैं। इसके अलावा मान लीजिए घर पे डिलीवरी अगर होती है तो हम लोग आशा के थ्रू उसका रेगुलर चेकअप करवाते हैं, ताकि वो घर जाए, ANM जाती है देखने के लिए कि बच्चा स्वस्थ है। अगर मान लीजिए उसको जरूरत है कोई मेडिकल इंटरवेंशन की, तो उसकी जो सबसे पास में जो स्वास्थ्य की फैसिलिटी है उसमें ले जाने का भी उसका काम है। तो हम लोग केवल परिवार नियोजन में, केवल जैसे इन्होंने बताया, केवल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, केवल जो है हम लोग अवेयरनेस की ही नहीं बात करें, हमने इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप में हम लोग देखते हैं, जहां पर हम लोग हमारा पर्पस ही ये है कि हमारा जो जब जीवन की शुरुआत हो और बच्चा जो है इस दुनिया में आए तो वो स्वस्थ हो, और अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग की देश की स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है उसका हम ध्यान रख पाए, इस तरह से हमने पॉलिसीज बना के रखी हैं। और ये जो है वो बिल्कुल नीचे हमारी गांव तक ये स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं।
और साथ में एक जागरूकता और शिक्षा का बड़ा अहम एक पहलू आ जाता है जब हम जनसंख्या की बात करते हैं कि किस तरह से एक स्वस्थ और नियंत्रित जनसंख्या हो हमारे पास जो कि देश के विकास में योगदान दे सके। तो डॉक्टर इंदु गिरेवाल, जब हम जागरूक और स्वस्थ एक माता या जागरूक स्वस्थ पिता की हम बात करते हैं तो उनका होना कितना जरूरी है और किस तरह से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है कि जो परिवार के सभी सदस्य हैं वो जागरूक हों और माता बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर एक संवेदनशील भावना अपनाएं, तो इसको लेकर कुछ कार्यक्रमों या कुछ प्रयासों की आप चर्चा करना चाहेंगे?
हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि स्वस्थ पुरुष और स्वस्थ महिला होने से हम कैसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। इस वर्ष वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर हमने अपने देश के लिए थीम चुना है, वो है हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसी फॉर द वेलबींग ऑफ मदर एंड चाइल्ड। इसका मतलब ये है कि हमारे जो भी प्रेगनेंसी होगी किसी भी मदर की, तो उसमें हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग होना बहुत जरूरी है। उसी का रिजल्ट हम देखेंगे कि मदर और चाइल्ड दोनों स्वस्थ रहेंगे। तो ये जो हमारी थीम है ये अकेली एक महिला के सोच से नहीं अचीव हो सकती है, उसमें पुरुष की भागीदारी बहुत जरूरी है। तो जो हमारी शिक्षित महिला और शिक्षित पुरुष जो कि हम इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के थ्रू करते हैं, उसमें हम इक्वल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, ताकि कोई भी कपल वो ये डिसाइड करे कि हमें किस समय पर प्रेगनेंसी चाहिए, तो वो सही टाइमिंग चुने। हमारी शादी अभी हो गई तो वो ये प्लान करें कि अब हमें एक साल के बाद बच्चा पैदा करना है या दो साल बाद करना है, जो भी उनको एप्रोप्रिएट समय लगे, ये उन दोनों को मिलजुल के करना है, आपस में बात करके करना है। दूसरा, जिनके पास एक बच्चा ऑलरेडी हो गया है तो वो ये डिसाइड करें कि अब हमें नेक्स्ट बच्चा कब पैदा करना है, तो हमारा प्रोग्राम इसमें काउंसलिंग के द्वारा उनको हेल्प करता है, उनको सपोर्ट करता है, और उनके बिहाफ पे हम कोई डिसीजन नहीं ले रहे, प्रोग्राम कोई डिसीजन नहीं देता है, इट इज अ काउंसलिंग। काउंसलिंग में जो कपल काउंसलिंग के लिए आते हैं तो हम उनको पूरी जानकारी देते हैं, और वो कपल वो अपने आप स्वयं डिसीजन लेते हैं और हमें अपना कितना बड़ा परिवार साइज चाहिए, उनको एक बच्चा चाहिए, उनको बच्चा नहीं चाहिए, या उनको दो बच्चे चाहिए, तीन बच्चे चाहिए, तो हम फैमिली साइज के बारे में उन्हीं को एम्पावर करते हैं कि ये वो खुद से डिसाइड करें। तो इस प्रकार से हम प्रोग्राम में एक हेल्दी वुमेन और हेल्दी मैन की हेल्थ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम यही है कि एक प्लान तरीके से प्रेगनेंसी हो और एक प्लांट पेरेंटहुड हो जो दोनों लोग मिलके उसमें भागीदार हो और वो अपनी इच्छा से अपने परिवार को प्लान करे।
जी निश्चित रूप से। आखिरी मैं टिप्पणी लेना चाहूंगा मीरा श्रीवास्तव जी आपसे, भारत की ये जो हमारे पास जनसंख्या है किस तरह से ये हमारे लिए एक बोनस साबित हो सकती है, कैसे हम अपने देश में इस पूरी जनसंख्या का सदुपयोग करते हुए देश के विकास में इस जनसंख्या की भूमिका को देख सकते हैं, और खास तौर पर जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है वो किस तरह से अपनी योजनाओं से इस जनसंख्या को पूरी तरह से लाभान्वित करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि आने वाले समय में हम विश्व की एक बहुत भले ही बड़ी आबादी हैं, लेकिन आने वाले समय में ये जो बड़ी आबादी है ये पूरी दुनिया में अपनी योग्यता और अपनी जो अपनी काबिलियत है उसको साबित कर सके।
कमल जी आपने एक ऐसा सवाल पूछा है ना जो बिल्कुल कोर है किसी भी देश की प्रगति के लिए, वो ये है कि जो हमारा यूथ, हमारी यंग पॉपुलेशन है, वो हमारे देश को आगे कैसे बढ़ाएगा। और हम लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि हमारी जो देश की पॉपुलेशन है बहुत यंग है, शायद दुनिया में सबसे यंग पॉपुलेशन भारत में ही है। तो उसको हम लोग जो हम लोग कहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो तो हमारे लिए बहुत बड़ा ये बोनस पॉइंट है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा एज है जो अपने आगे की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर सकता है और हमारे देश को विकसित भारत का स्वरूप दे सकता है। उसके लिए जो है, जो हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को तो हम लोग अपने अच्छे एजुकेशन से, स्किल एजुकेशन से, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से, उसको हम लोग एक ऐसा स्वरूप दे सकते हैं कि भारत कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। हम लोग उस पर कितने सारे अलग अलग तरीके से हम अपने यूथ को इस तरीके से ट्रेन करें, उनको इस प्रकार की वैल्यूज दे, उनका जो देश के प्रति कंट्रीब्यूशन होए कि वो हमारा देश जो है निरंतर आगे बढ़ता चला जाए। तो हम लोग जिसको यूथ बल्ज की बात करते हैं, यूथ बल्ज का मतलब ही ये है कि जिस अवस्था में हमारा जो पॉपुलेशन है, सबसे बड़ा कोहोर्ट है आज ये, तो अगर हम इसको अच्छे से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उनकी हेल्थ कंडीशंस, जो नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं उनकी ओर उनको शिक्षित करें, तो हम लोग का तो देश कहीं का कहीं पहुंच ही जाएगा। और इसमें भारत सरकार की अगर पॉलिसीज देखें तो वो तो उसी दिशा की ओर ही बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग यही चाह रहे हैं, हम लोग सब मिनिस्ट्री में यही कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को किस तरह से अपने विकसित भारत के लिए उनको निरंतर सतत रूप से प्रोत्साहित करना है, उनको उस दिशा में लेके जाना है कि भाई आप सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन आवश्यक है और हमें जो है अपना दायित्व सबको निभाना है।
निश्चित रूप से। तो दुनिया की पूरी आबादी का पांचवां हिस्सा भारत में बसता है, और यही अपेक्षा है कि जिस तरह से हमारे दोनों विशेषज्ञों ने चर्चा की कि जिस तरह से अब धरातल पर योजनाएं हैं और एक स्वस्थ आबादी की ओर हम बढ़ चले हैं, आबादी भी नियंत्रित है और स्वस्थ आबादी है, और जिस तरह से हमारी पूरी आबादी हमारे लिए एक जनसंख्या का लाभ प्रस्तुत कर सकती है, उसको बढ़ाते हुए हम आने वाले समय में अपनी जनसंख्या की एक बहुत बड़ी भूमिका देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा श्रीवास्तव जी आपका और डॉक्टर इंदु ग्रेवाल आपका, आप कार्यक्रम में जुड़े और आपने जनसंख्या दिवस के अवसर पर बड़े महत्वपूर्ण विचार हमारे श्रोताओं के समक्ष रखे। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए।
अभी आप सुन रहे थे विश्व जनसंख्या दिवस और इससे जुड़े मुद्दों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रही थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव मीरा श्रीवास्तव और परिवार नियोजन प्रभाग की अपर आयुक्त डॉक्टर इंदु ग्रेवाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।